Om Namah Shivaya. Dear listeners of Shaivam.org, the next program is Spiritual Discourse. In this, you are about to listen Kathopanishad, presented by Swami Sri Pranavanandaji Maharaj. Thank you. Om Namah Shivaya.
मैं जब भगवान दुनिया बना रहे थे उस समय भगवान को छोड़कर और कुछ था क्या? भगवान को छोड़कर और भी कुछ होता तो फिर वो सारी चीजें भी वो दुनिया के प्रति कारण बन जाती। सदैव सौम्य इदमग्र आसित श्रुति कहती सत एव सौम्य इदम अग्रे, इदम अग्रे मैंने दुनिया बनाने के पहले। भाई कुम्हार जब घड़ा बनाता है तो वहां बहुत सारी चीजें हैं, वहां जमीन है, वहां चक्र है, वहां पानी है, हवा है, उसके आसपास मदद करने वाले लोग बहुत सारे लोग हैं। इसलिए वहां घड़े के प्रति कारण तो बहुत सारे निमित्त कारण हैं। लेकिन जब दुनिया भगवान बना रहे थे उस समय कुछ नहीं था, सत एव सौम्य सद्रूप जो परमात्मा अकेले थे, इसलिए भगवान को छोड़कर कोई दूसरा निमित्त कारण नहीं है। भाई भगवान ने जब दुनिया बनाई तो वहां दुनिया बनाने के लिए कोई सामग्री भी रही क्या भगवान को छोड़ के? भाई वहां कुम्हार तो बहुत सारी सामग्री जुटा करके घड़ा बना लिया, ऐसे भगवान ने दुनिया बनाई तो बहुत सारी चीजें जुटा के बनाई होगी, और वो जुटाई होगी तो कहां से जुटाई होगी, और वो सारी सामग्री जुटाई हुई वो कहां से पैदा हुई? इसलिए भगवान को दुनिया बनाने के लिए सामग्री जुटाने की जरूरत नहीं पड़ती है, और भगवान को भी दुनिया बनाने के लिए सामग्री जुटाना पड़ेगा तो वो भगवान होगा क्या? क्या आप उसको भगवान बोलेंगे? और जब सामग्री जुटाएंगे तो उसमें से कोई सामग्री कम पड़ गई या उनमें से कोई सामग्री नहीं होगी तो भगवान भी दुनिया नहीं बना पाएंगे। तो ऐसी अवस्था में भगवान की भगवत्ता ही बनेगी नहीं। आप भगवान को क्या बोलते हैं? कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, वो कर भी सकते हैं और वो नहीं भी कर सकते हैं, और वो उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं। ऐसा उसका अर्थ है, कर्तुम माने कर भी सकते हैं और अकर्तुम माने नहीं भी कर सकते हैं, और अन्यथा कर्तुम माने अरे उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं, ऐसा मतलब। आपके अंदर कर्तुम सब कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, ये बहुत मजेदार बात है मधुबाब, आप कर सकते हैं। ये करने का सामर्थ्य होना बड़ी बात नहीं है, लेकिन वो जो नहीं करने का सामर्थ्य होना ये बहुत बड़ी बात है। हम आपको बोलेंगे इतनी माला जप करो, आप बैठ के जप कर रहे हैं, लेकिन मैं बोलूं कि आप कुछ मत करो तो करना सरल है कि नहीं करना सरल है? करना तो बहुत सरल है, लेकिन नहीं करने में जाना बहुत कठिन है। आपको मैं बोलूं पांच मिनट आप अपना हाथ हिलाते बैठे रहो, बैठोगे? हाँ, कोई बड़ी बात नहीं है, क्यों घंटा भर बैठ जाए? लेकिन मैं बोलूं आप एक साथ एक स्थिर हाथ बनाए रखो, कुछ नहीं करना है, आपके हाथ की जो क्रिया है वो खत्म कर दो और स्थिर हाथ बना के दो मिनट बैठे रहो, बहुत मुश्किल होगा, बहुत मुश्किल होगा। इसलिए करने की अपेक्षा नहीं करना ज्यादा कठिन है। आदमी कर भी सकता है लेकिन नहीं भी कर सकता है, ये बहुत कठिन है। आप खा सकते हैं, बहुत सरल है, खाना सरल है कि नहीं खाना सरल है? आपको डॉक्टर ने बोला कि भैया ये मीठा खाओ, वो तो वो खाते ही रहते हैं भाई, वो खाते ही रहते हैं, लेकिन डॉक्टर ने बोला मत खाओ, वो तो बहुत कठिन है। डॉक्टर ने बोला कि भैया तुम नमक मत खाओ, खाना तो बहुत सरल है लेकिन नमक नहीं खाना बहुत कठिन है। एक हनुमान प्रसाद पोद्दार जी थे, गीता प्रेस बहुत महापुरुष थे, सब कुछ छोड़कर यहां आए होंगे, सब कुछ छोड़कर गीता प्रेस गीता वाटिका में बैठ गए। किसी ने जाके पूछा कि महाराज अब क्या करते हैं? बोले कुछ नहीं करता हूं। बोले कि मैंने मन को समझा दिया, आज तक तुमने बहुत कुछ किया है लेकिन अब तुम्हें कुछ भी नहीं करना है। बोले मेरे मन ने मान लिया, अब मैं कुछ नहीं करता हूं। ये है अकर्तुम सामर्थ्य। परमेश्वर में वो सामर्थ्य है, वो कर भी सकते हैं और चाहे तो नहीं भी कर सकते। आप बहुत कुछ कर रहे संसार में, कर रहे हैं लेकिन आप अपने मन को आदेश दो, अब नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। वासनाएं खत्म, कामनाएं विकार खत्म। आप अपने मन को समझा दे अब राग द्वेष नहीं करना है, तो नहीं करना है। ये करने का भी सामर्थ्य हमारे में हो और नहीं करने का भी सामर्थ्य हमारे में, चलने का भी सामर्थ्य हो और नहीं चलने का भी सामर्थ्य, सोचने का भी सामर्थ्य हो और नहीं सोचने का भी सामर्थ्य, विचार करने का सामर्थ्य हो, विचार में जाने का सामर्थ्य हो और निर्विचार होने का भी सामर्थ्य हो। हम जब चाहे तब निर्विचार हो जाए, जब चाहे तब। ये परमात्मा सारी दुनिया बना लेते हैं और भगवान को ऐसा लगे कि चलो भैया अब समाधि लगा ले तो हमारी, भगवान को लगे सारी दुनिया बना दी अब इसको बिगाड़ दू क्या। अच्छा भगवान, ये कर्तुम और अकर्तुम सामर्थ्य है, उसमें कर्तुम सामर्थ्य भी है, अकर्तुम सामर्थ्य भी है। वो कर भी सकता है और वो नहीं भी कर सकता है। ये सामर्थ्य है, नहीं करने का भी सामर्थ्य है। आदमी में करने का सामर्थ्य होता है लेकिन नहीं करने का सामर्थ्य नहीं होता, इसलिए वो करने में अटका पड़ा रहता है। आदमी के जीवन में करना बंधन तब बनता है जब उसमें अकरने का सामर्थ्य नहीं होता है, नहीं करने का सामर्थ्य नहीं होता है, इसलिए कर्म बंधन बन जाता है। कर्म बहुत बड़ा बंधन बन जाता है क्योंकि करने का सामर्थ्य तो है और वो करना हमें बंधन में ले जाता है, आदत में ले जाता है, करने में ले जाता है और फिर नैष्कर्म में हमारे जीवन से विदा हो जाता है। वो बहुत बड़ा बंधन है, इसलिए ईश्वर में बंधन नहीं, कर्म का बंधन ईश्वर में नहीं है क्योंकि उसमें नहीं करने का सामर्थ्य है, कर्म के त्याग का सामर्थ्य है। और अन्यथा कर तुम बने, अरे वो तो उल्टा पुल्टा भी कर सकते हैं, बिना कारण का भी कुछ भी कर सकते हैं। भगवान ने गिरिराज गोवर्धन पर्वत को उठाया, ये कर्तुम सामर्थ्य है, अकर्तुम है कि अन्यथा कर्तुम है? अन्यथा कर्तुम है। भगवान ने अग्नि का पान कर लिया, अग्नि का पान करना, सारा वन जलने लगा, चारों ओर से ग्वाल बाल घिर गए और सबने भगवान से प्रार्थना की, कृष्ण कृष्ण महाभाग तन्नाथम गोकुलम प्रभो, आप गोकुल के नाथ हैं, हमारी रक्षा करो, रक्षा करो। भगवान ने कहा आंख बंद कर लो, सबने आंख बंद कर ली और भगवान ने कहा भगवान को याद करो, भाई बचाने वाला तो वही है ना। एक बार की बात कहते हैं, परम पूज्य महाराज श्री जगन्नाथपुरी गए थे, उसमें बहुत सारे लोग महाराज जी के साथ थे, उसमें स्वामी श्री प्रबुद्धानंद जी महाराज जी भी थे। वहां का समुद्र बहुत अच्छा है जगन्नाथपुरी, तो बहुत आपको स्नान करना हो तो बहुत सुंदर है लेकिन आपको सावधानी से करना पड़ता है। और वो बहुत अंदर चले गए, लोगों ने रोका आज मत जाओ, लेकिन वो आप सोचते थे कि मैं तो आत्मा हूं, मैं ब्रह्म हूं, ब्रह्म को क्या होता है। महाराज जी ने कहा भैया ब्रह्म हो तो अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अरे बोले नहीं, वो तो ब्रह्म हूं मैं। लोग भी सोचे कि भाई ब्रह्म को कुछ होता जाता तो है, लेकिन हुआ वो समुद्र ले गया अंदर, ले गया वो, सचमुच ले गया भैया, सचमुच ले गया वो। अब सब लोग रोना गाने लगे, महाराज जी ने कहा रोने गाने से कुछ नहीं होता है, बोले किनारे बैठो और भगवान का भजन करो। बोले अब उस ब्रह्म को बुलाने का एक ही उपाय है, बोले ब्रह्म को याद करो। अब सब लोग बैठ करके याद करने लगे, महाराज जी की कृपा थी, फिर वापस आ गए। फिर बाद में लोगों ने कहा जाओगे, बोले नहीं बस बस बोले देख करके आ गए ब्रह्म तत्व। भगवान ने कहा कि एक ही उपाय है, आंख बंद करो और भगवान को याद करो। भगवान ने बहुत बड़ा संदेश दिया, वहां आंख बंद कराने की जरूरत नहीं थी। अरे भैया तो खुले आंखों से भी भगवान बोलते देखो देखो मैं अभी अग्नि का पान कर लेता हूं, सब अग्नि का पान कर लेते और सब लोग देखते अरे इन्होंने अग्नि का पान कर लिया हा? लेकिन नहीं, भगवान ने सोचा कि इनके अंदर भगवान के प्रति समर्पण पैदा करना भी जरूरी है। भगवान की आंख बंद करो, याद करो, भगवान याद करने लगे और याद करने लगे भगवान सब अग्निपान कर लिए और भगवान ने कहा आंखें खोलो, आंखें खोली देखो सब अग्नि का अग्नि समाप्त, वहां कोयले कोयले रह गए थे चारों ओर, नारा धुआं भी नहीं था वहां से, क्योंकि अग्नि के बिना धुआं नहीं निकलता है भाई। जहां भी धुआं निकलता है वहां थोड़ी बहुत अग्नि तो रहती है ना, लेकिन भगवान ने सारी अग्नि का पान कर लिया और वहां धुआं भी नहीं, कोयले ही कोयले। अब सब लोग देख करके बड़े प्रसन्न हुए और सोच क्या रहे थे, हमारी बात भगवान ने सुनी, भगवान के प्रति आस्था निर्मित हो गई। लेकिन उनको ये बोध नहीं था कि यही भगवान है, बोले कोई भगवान होगा जिसने अग्नि का पान कर हमारी रक्षा करती। कई बार करते हैं ना बच्चों को भी ऐसा करते हैं, मैंने देखा है, ऐसा नहीं करना चाहिए लेकिन करते हैं। बोले खिलौना मांगता है बच्चा तो बोले भगवान से मांगो, आंख बंद करा देते हैं, आंख बंद कर देता है भगवान, वो परिचितप कर देता है। ओहो बच्चे को सचमुच लगता है कि भगवान ने दिया खिलौना, और वो कई बार बच्चे फिर हाथ जोड़ के फिर भगवान को बोलता है खिलौना खिलौना खिलौना। आस्था निर्मित करने के लिए भगवान ने कहा आंखें बंद करो, आंखें बंद कर दी, अग्नि का पान कर दिया, ये अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य है। अग्नि का पान करना संभव ही नहीं है, ये तो असंभव चीज है। हनुमान जी महाराज ने गिरिराज को द्रोणागिरी पर्वत उठा लिया, ये अन्यथा कर्तुम सामर्थ्य। तो भगवान में तीनों प्रकार का सामर्थ्य, कर्तुम आकर्तुम और अन्यथा कर्तुम। इसलिए परमेश्वर को दुनिया को बनाने के लिए कारण समुदाय को जुटाने की जरूरत नहीं है। आज भी कारण समुदाय को जुटाकर दुनिया बनाने का सामर्थ्य ईश्वर में है तो इसका मतलब कि वो ईश्वर ही नहीं है, वो पराधीन तत्व है। ईश्वर तो स्वाधीन है, पर सर्वतंत्र स्वतंत्र है। और नहीं तो ईश्वर को भी यदि साधन सामग्री जुटाना पड़े तो ईश्वर भी बोलेगा भैया ये हम नहीं कर सकते। बोले क्यों, वो चीज नहीं है, क्यों सारी चीजें जुटाते एक भी चीज रह जाए तो भगवान भी दुनिया बना नहीं पाएंगे। इसलिए इस संपूर्ण सृष्टि का निर्माता जो परमेश्वर है वो इसका निमित्त कारण भी है और इसका उपादान कारण भी है। परमेश्वर से छोड़कर दूसरा कोई इसका निमित्त कारण नहीं है। ये सारी दुनिया परमात्मा से बनी और ये उपादान कारण भी है। मैंने आपको कहा उपादान कारण जिससे दुनिया बने और जिसके बिना दुनिया का अस्तित्व न रहे उसी को उपादान कारण बोलते हैं। मिट्टी से घड़ा बनता है और वो मिट्टी के बिना नहीं रहता है, उसका अस्तित्व घड़े के अस्तित्व के साथ जुड़ जाता है, घड़े के अस्तित्व के साथ मिट्टी का अस्तित्व बन जाता है, दोनों का अस्तित्व एक हो जाता है। जो घड़े का अस्तित्व है वही मिट्टी का अस्तित्व है और इसीलिए घड़े के प्रति मिट्टी उपादान कारण है, इस दुनिया के प्रति उपादान कारण परमेश्वर है और इसके प्रति निमित्त कारण भी परमेश्वर है। और आप इतना सिद्धांत जान ले आपको फिर वेदांत की बहुत सारी चीजें जानने की जरूरत नहीं है। आपने केवल इतना ही जाना उपादान कारण परमेश्वर है, उपादान कारण ईश्वर है, आत्म तत्व है, आपने इतना ही जान लिया। अब वेदांत में आपको बहुत कुछ जानने की जरूरत नहीं है, अब आपको दुनिया जब दिखाई देगी तो आपको क्या दिखाई देगा? इसलिए दुनिया में केवल एकमात्र सिद्धांत, ये सनातन वेदांत का सिद्धांत है, ये सारी जो दुनिया है परमात्मा का रूप है। इसलिए कहते हैं तस्मिन श्रिताः, उसी के अंदर उसी के आश्रय में ये दुनिया के सारे पदार्थ रहते हैं। तदु नात्यति कश्चन, उसका कोई अतिक्रमण नहीं कर सकता है, उसको कोई छोड़ नहीं सकता है, उसको कोई लांग नहीं सकता है। अतिक्रमण का अर्थ ही है उसको कोई लांग नहीं सकता है, उसको कोई छोड़ नहीं सकता है। आप कैसे छोड़ोगे? आपके हाथ में घड़ा है, आप मिट्टी को कैसे छोड़ोगे? आप मिट्टी को छोड़कर घड़े को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं, आप सोने को छोड़कर अलंकारों को अपने हाथ में नहीं ले सकते हैं। आप लेके दिखाइए कि आप अलंकार तो हाथ में ले लेकिन सोना न ले, आप घड़े को हाथ में तो ले लेकिन मिट्टी को हाथ में न ले, ये कैसे संभव है? सर्वे वेदा यत पदम आमनंती तपांसी सर्वाणि च यद वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदं संग्रहेण ओम। कठोपनिषद सर्वे वेदा यत पदम आमनंति, सर्वे वेदा अवेदाश्च। एक आप वहां व्याकरण का एक सूत्र एंगह पदांता दति, आप उसमें अ लगा दो सर्वे वेदा और एक दूसरा भी अर्थ निकालो अवेदाश्च। दुनिया के सारे वेद और अवेद माने वैदिक शब्द और अवैदिक शब्द वो परमात्मा का ही प्रतिपादन करते हैं। ये वैदिक शब्द परमात्मा का प्रतिपादन करते हैं, ये तो आपको मालूम है। सारे वेद परमात्मा का प्रतिपादन करते हैं, ये आपको मालूम है। लेकिन जो वेद भिन्न शब्द हैं वो भी परमात्मा का प्रतिपादन करते हैं। ये माइक है, ये किसका नाम है? ये माइक नाम किसका है? आपका सोचते हो ना कि सर्वम खल्विदम ब्रह्म, जब सब कुछ ब्रह्म है तो ये माइक ब्रह्म है कि नहीं? ये ब्रह्म है तो ये किसका नाम है? ये माइक के नाम किसका है? अच्छा मैं आपको एक बात पूछता हूं, ये आपका जो शरीर है ना, शरीर ये आपके पूरे आकृति का नाम शरीर है, इसका नाम क्या है? अंगुली का नाम क्या है? जब आप अंगुली बोलते हैं तो किसको बोलते हैं? बोलो बोलो, डरो मत, कुछ डर रहे हो क्या? आपका ये पूरा शरीर शरीर है, शरीर पद वाच्य, ये आकृति है, ये नाम रूपात्मक जो शरीर है, ये आकृति जो है, इस आकृति को आप शरीर बोलते हैं। तो ये क्या है? हाथ है। ये हाथ किसका नाम है? अरे शरीर का ही है। ये नाखून, ये किसका नाम है? ये नाक किसका नाम है? ये कान किसका नाम है? ये आंख किसका नाम है? ये बाल किसका नाम है? अरे जितने भी अंग उपांग हैं इसके, ये सारे नाम किसके हैं? शरीर के हैं। अजा बोलते सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सब ब्रह्म है। जब सब ब्रह्म है तो ये माइक कौन है? तो ये माइक नाम किसका है? डरो मत। ये सारे दुनिया के शब्द जो है ना वो परमात्मा को ही बोलते हैं। ये माइक भी जब बोलता है तो किसको बोलता है? परमात्मा को ही बोलता है, क्योंकि परमात्मा को छोड़ के दूसरा नहीं है। जैसे नाक बोला तो भी किसको बोला? शरीर को, शरीर ही है ना। आप शरीर एक व्यापक शब्द है और नाक एक परिचिन्न शब्द है, लेकिन वो है किसका? शरीर का है। आप माइक बोलो, ये परिचिन्न शब्द मालूम पड़ता है, लेकिन ये माइक शब्द किसका नाम है? ब्रह्म का ही नाम है। अब ये गिरीश नाम किसका है? ब्रह्म का ही नाम है। मधुबाबू नाम किसका है? अरे ब्रह्म का ही, क्योंकि उसको छोड़ के दुनिया में कुछ भी तो नहीं है। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ये सब कुछ ब्रह्म है, इसलिए ये सारे दुनिया के जितने भी नाम हैं वो नाम परमात्मा के नाम, सर्वे वेदा अवेदाश्च, दुनिया के सारे वेद और वेद को छोड़कर दुनिया के शब्द यत पदम आमनंती, उसी परमात्मा के बारे में ही कहते हैं। अरे आप घड़ा बोलो तो भी मिट्टी, और सकोरा बोलो तो भी, कुल्लड़ बोलेंगे तो वो भी मिट्टी, और ये शरीर बोलेंगे तो अरे ये भी मिट्टी है ना। इसलिए कहते नातेति कश्चन, आप अतिक्रमण नहीं कर सकते, आप घड़े को हाथ में लेके मिट्टी को नहीं छोड़ सकते। जब आप घड़ा हाथ में लेंगे तो आपके हाथ में मिट्टी होगी। आप सोने को छोड़ के अलंकारों को ग्रहण नहीं कर सकते। आप अलंकार को छूते हैं उसमें आप किसको छूते हैं? आप सोने को ही छूते हैं। इसलिए भगवान ने गीता जी में बोला ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हवीर ब्रह्माग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्मैव तेन गंतव्यम ब्रह्म कर्म समाधिना। इसलिए परम पूज्य महाराज श्री कहते हैं कि आपको ज्ञान हो गया तो ज्ञान होने के बाद आप दुनिया को छोड़कर भागते नहीं हैं। उस समय आपकी सारी क्रियाएं आपका व्यवहार ब्रह्मरूप हो जाता है। आप चल भी रहे हैं, आप देख भी रहे हैं, आप छू भी रहे हैं, आप खा भी रहे हैं, ये सारी जो क्रियाएं सारा जो आचरण व्यवहार है आपको ऐसे अनुभव में आता है, वो सब कुछ ब्रह्म है। ब्रह्मार्पणम अर्पण हवि, आप यज्ञ कर जो भी कुछ, सब कुछ ब्रह्म है। अब वो ज्ञानी बैठ करके हवन भी करता है तो जानता है वो अग्नि भी ब्रह्म है, होता भी ब्रह्म है, और जो हवनात्मि का जो क्रिया है वो भी ब्रह्म है, और जिसका आप हवन कर रहे हैं वो भी ब्रह्म है। एक महात्मा जी थे, हम तो नए नए वेदांत पढ़ते थे, नए नए वेदांत थे, हम बच्चे थे, बहुत मजेदार साधु थे, और वो बीड़ी पीते थे बीड़ी, लेकिन उनका एक नियम था वो स्वयं नहीं सुलगाते थे। उनके पास बीड़ी है, माचिस है, लेकिन जब तक कोई आदमी नहीं मिलता उसको सुलगा के देने वाला तब तक नहीं पीते थे। कोई भी आदमी आ जाए, और इतने भोले भोले, वो बहुत भोले साधु, वो जाते बोलते भैया इसको सुलगा दोगे, वो सुलगा देगा तो पीते थे। तो हम उनको पूछते थे महाराज आप तो ब्रह्म हैं, बोले इसमें क्या संदेह है? तो हम पूछते थे कि आप ब्रह्म हैं तो बीड़ी क्यों पीते हो? तो वो बोलते थे पीने वाला भी ब्रह्म है, और ये बीड़ी भी ब्रह्म है, और ये पूछने वाला भी ब्रह्म है। जब वो भोजन करते तो हम चिढ़ाते थे जाके, महाराज आप ब्रह्म हैं? बोले हाँ। तो हम पूछते थे कि आप खाते क्यों फिर भोजन? वो बोलते थे अरे ये खाने वाला भी ब्रह्म है, ये भोजन भी ब्रह्म है, खाने की क्रिया भी ब्रह्म है, और ये बोलिए सब विश्व ये ब्रह्म है। एक बार तो पूछा उन्होंने मेरे को, तुमको विश्वरूप हो गए दर्शन हो गया क्या? मेरे को पूछा कि तुमको विश्वरूप के दर्शन हो गए क्या? रावा हमको तो उतना ज्यादा बोध तो था नहीं, हमने कहा ये विश्वरूप का बोध तो अर्जुन को हो गया था। हमने कहा अर्जुन को हो गया था, पर मेरे हमको कहां से होगा? अरे बोले नहीं, ये विश्व ही वो परमात्मा का रूप है, तुमको भी विश्व का विश्वरूप का दर्शन संभव है। विश्वरूप का दर्शन माने ये विश्व ही परमात्मा का रूप है, ये विश्व परमात्मा से अलग नहीं है। हमने कहा फिर वो अनुभव में कैसे आए? क्योंकि भगवान ने वहां भगवान ने अर्जुन को दिखा दिया था, शक्तिपात कर दिया था। उन्होंने कहा अभ्यास करो, अभ्यास अभ्यास है न तो कौनते वैराग्य न चक्रिय थे। उस महात्मा ने कहा अभ्यास करो, मैंने कहा महाराज अभ्यास कैसे करूं? बोले आंख बंद करके बैठो और अनुभव करो, ये विश्व भगवान का ही रूप है, अनुभव करो, ये शरीर भी ब्रह्म है, आत्मा है, परमात्मा है, ये सारी चीजें जो दिखाई दे रही हैं, जो अपनी मालूम पड़ रही हैं, जो अपनी नहीं मालूम पड़ रही हैं, जो अच्छी मालूम पड़ रही हैं, जो बुरी मालूम पड़ रही हैं, जहां राग हैं जहां द्वेष है, अरे बोले साहब जहां तक दृष्टि का विषय है वो सब कुछ आप अनुभव करो वो ब्रह्म है। नात्येति कश्चन, परमात्मा को छोड़कर दुनिया में कुछ भी नहीं है, हम परमात्मा का अतिक्रमण नहीं कर सकते। ओम नारायण नारायण नारायण। श्री बैठन थोड़ा सा हम जप करेंगे। ओम ह्रीम नमः शिवाय, 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 नारायण।